مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو. اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھنا شروع کریں, جو بھائی بہن خداوند کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں, آپ کے لیے یہاں پر بائبل مقدس مہیا ہے, آپ خداوند کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں, تو ضرور لیجئے. جیسا کہ ہم زبور نویس میں سے دیکھ رہے تھے, گاؤ سنا تسی رب دی. جب ہم زبور 111 کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خداوند کا کلام ہمیں کیوں یوں اس طرح سکھاتا ہے, خداوند کی حمد کرو, میں راست بازوں کے مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا. جیسا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے نہد نامہ میں سے, افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں سے, سٹ واک سٹینڈ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, اور ہم نے کل سیکھا تھا انسانیت, جو پرانی انسانیت ہے اس میں جو گھناؤنا پن پایا جاتا ہے جب وہ خدا کی محبت سے خالی ہوتی ہے, اور ہم نے اس کے بارے میں سیکھا. آج ہم سیکھیں گے کہ خدا نے ہمارے لیے کیسا عظیم کام کیا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کیا, اور یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کلام بولا, ایلی ایلی لما شباکتنی, اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس تصویر کو کہ یسوع مسیح کی خدا باپ کے ساتھ وہ علیحدگی ان تمام گناہوں کے باعث, جس کے لیے بائبل مقدس یوحنا 3:16 میں کہتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کے واسطے دے دیا, اپنا اکلوتا بیٹا. اور یہ علیحدگی خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جھیلی اپنی زندگی میں, ہمارے لیے سامنا کیا اور صلیب پر کہا, ایلی ایلی لما شباکتنی, اے میرے خدا تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا. اور ہم پچھلے دنوں میں دیکھ رہے تھے کہ روح یعنی کہ روح القدس کی رہنمائی میں چلنا, اور جسم جو جسمانی خواہشوں میں زندگی گزارتے ہیں اس کی تصویر کو دیکھا تھا. اور مسلسل ہمارا جو موضوع ہے سٹ واک سٹینڈ, ہم سٹ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. سٹ کا مطلب ہے بیٹھ جانا. افسیوں 2:2 اس کی 6 آیت کے مطابق ہم جب دیکھتے ہیں کہ مسیح نے ہماری حالت, ایماندار ہوتے ہوئے مسیح نے ہماری حالت آسمانی مقاموں پر اس کے نزدیک, خدا نے ہمیں بے عیب اور پاک ٹھہرایا, انہیں جو اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں ان کو اس نے کیا ٹھہرایا, پاک اور بے عیب ٹھہرایا. اور یہ ہماری مسیح میں کیا ہے, حالت ہے, ہمارا مقام ہے کہ اس نے ہمیں بے عیب ٹھہرایا. اور واک یعنی کہ چلنا, افسیوں 4:1 کے مطابق جو بھائی لکھنا چاہتے ہیں حوالہ جات کو لکھ لیں, اس دنیا میں فتح مند انسان کی طرح چلنا پھرنا, کمال فروتنی اور تحمل اور محبت سے مسیح کے لیے کیا کرنا, چلنا پھرنا اور اس کے جلال کو اپنی زندگی میں سے ظاہر کرنا, یہ ہے واک. اور سٹینڈ یعنی کہ کھڑے ہونا, مسیح میں قائم رہنا, کھڑے ہونا یا پھر مسیح میں قائم رہنا. افسیوں 6:1 اس کی 11 آیت کے مطابق, کہ خدا کی قدرت کے زور میں ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہنا. اور یہ مسیحی ایمانداروں کی زندگی کا سارا نچوڑ ہے جو وہ سیکھتے ہیں, سٹ یعنی کہ اپنی حالت کے بارے میں سیکھنا کہ ہم کیسے خدا کے حضور میں بابرکت ٹھہرے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں افسیوں 2:2 اس کی 4 آیت کو. پہلی آیت میں سے ہم نے دیکھا تھا زندہ اور مردہ لوگوں کے بارے میں, کہ مردہ نہ چل پھر سکتے ہیں لیکن زندہ چل پھر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. اور پھر دوسری آیت میں سے ہم نے دیکھا تھا اس ابلیس کے بارے میں جس نے آسمان پر بغاوت کی, और उस बगावत के बायस बनीनु इंसान में वो पुरानी इंसानियत आदम के गुनाह के बायस आई और वो सरकश बना और खुदावंद की नाफरमानी में जिंदगी गुजारना शुरू की। लेकिन तीसरी आयत में हमने देखा था जिस्म के वो बुरे काम, वो बुरी तस्वीर को देखा जो गुरूर, हसद और तफरकों में, बिदतों में जिंदगी गुजारती है। लेकिन जब हम रूह के मुआफिक चलते हैं तो हम अपनी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। मेरे साथ चौथी आयत को पढ़ें, इफिसियों 2:4 उसकी चौथी आयत, यूं लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने किनसे की, हमसे की। यहां पर पालूस रसूल हर एक ईमानदार को मुखातब करते हुए कहता है, खा वो गैर यहूदी है, यहूदी मसीही है, वो हर दौर के ईमानदारों को यहां पर मुखातब होकर कहता है कि तुम जो पहले मुर्दा थे, पुरानी इंसानियत की रफ्शों में चलते थे, तुम में वो अभी भी वो पुरानी इंसानियत पाई जाती है, लेकिन खुदा ने हमें नई इंसानियत दी यीशु मसीह ने। इसीलिए ये आवाज कोहे कलवरी पर बुलंद की, एली एली लमा शपातनी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि हमारी वो पुरानी इंसानियत मर जाए और वो कलाम पूरा हो कि ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंग कहां रहा, क्योंकि मौत फतह का लुकमा हो गई। और ये फतह यीशु मसीह में हर ईमानदार को इस जमीन पर हासिल है कि उस फतह में जिंदगी बसर करे। और हम रूह के फलों को देखते हैं तो गलतियों 5:5 उसकी 22वीं आयत में जो रूह का पहला फल है वो ये है, मोहब्बत। क्या लिखा है, मगर रूह का फल क्या है, मोहब्बत। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि हमारे सारे गुनाहों कसूरों के वास्ते अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। मोहब्बत गुनाहों पर पर्दा डालती है, यानी कि फॉरगिवनेस, मोहब्बत माफी का सबक देती है, मोहब्बत माफ करने की ताकत और कुदरत रखती है। जब खुदा की मोहब्बत हमारी जिंदगी में पाई जाती है, और ये क्या है, रूह कुदस की रहनुमाई में चलना। मोहब्बत की तारीफ कुछ इस तरह से है, माफी देना रजा कराना तौर पर। जब हम किसी को माफ करते हैं तो माफ करने का मतलब है कि अपनी सख्त नाराजगी को छोड़ देना, किसी की खता को बश्क देना, उसके कसूरों को फिर दोबारा कभी अपनी बातचीत में याद ना करना, फिर कभी भी उसकी बातचीत, उसके गुनाह को, ख्वाब आपका भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसके गुनाह को दोबारा बातचीत में भी याद ना करना। जैसे कि जबूर 103 में खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी, हमारी खताएं हमसे दूर कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो हमारी खताओं को दोबारा याद करे, और ना ही वो हमारी खताओं को दोबारा हमारे सामने या अपने सामने रखता है। उसने हमारे गुनाहों को पूर्व और पश्चिम की तरह दूर फेंक दिया है ताकि वो दोबारा याद ना करे। और हमें भी जो रूह कुदस की रहनुमाई में जिंदगी गुजारते हैं, अगर आपका कोई भाई, बहन, बुजुर्ग, बच्चा आपको दुख पहुंचाता है तो उसे माफ करने की जरूरत है, ताकि सारा जलाल किसके नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम को मिले। मेरे साथ एक हवाला देखें, जैसे कि हम आगे बढ़ते हुए लूका की इंजील उसका 17वां बाप, लूका की इंजील उसका 17वां बाप, वहां पर इस माफी के दर्स को हम देखते हैं जो कि ईमानदार की जिंदगी में लाजमी होना जरूर है। यहां पर यूं लिखा है, तीसरी आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, खबरदार। यहां पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम देते हुए कहता है कि खबरदार, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर। अगर आपकी नजर में कोई गुनाह गलती कता करता है तो आप उसके रूहानी तौर पर भाई होते हुए, उसके दोस्त होते हुए उसे मलामत करें कि ये बात गलत है। अगर तौबा करे तो उसे क्या कर, मुआफ कर। और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7वीं दफा तेरे पास आकर कहे कि तौबा करता हूं तो उसे क्या कर, मुआफ कर। 7 के 70 दफा जब हम इसकी जमा करते हैं तो एक दिन में 490 मर्तबा खुदा ईमानदारों को यह कहता है कि अपने फैलो बिलीवर यानी कि अपने रफाकत रखने वाले ईमानदार भाई बहन को मुआफ करने की जरूरत है, क्योंकि हम मुआफ किए गए हैं, इसीलिए हमें भी एक दूसरे को मुआफ करने की जरूरत है। मसीह ने हमारे गुनाहों को माफ करके वो तमाम गुनाहों की दस्तावेज जो हमारे नाम के खिलाफ थी उसे मिटा डाला। उस तमाम गुनाहों को उसने सलीब पर जब वो तरीकी का उस अलहदगी का मजा चखा जिसमें उसने ये बात पुकार के कही, एली एली लमा शपातनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हर एक ईमानदार के लिए मेरे साथ एक हवाला देखे, कुलसियों 2 बाप उसकी 13वीं आयत से, वहां पर इस तस्वीर को हम देख सकते हैं कि उसने हमारे 2 या 4 या 5 गुनाह नहीं मुआफ किए। 13वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ क्या किया, जिंदा किया, और हमारे सब गुनाहों को क्या किया, मुआफ किया। सब गुनाहों को उसने मुआफ किया और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और ये है वो खुदा बाप की मोहब्बत, और वो हमारे गुनाहों को फिर हमारे सामने नहीं लाता। अंजीले मुकद्दस में माफी के बारे में जब हम आयात को, खुदा की उस कुदरत को, उसकी मोहब्बत को देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह बताता है। आज मेरे साथ हवाला जात देखें जो भाई और बहन पढ़ सकते हैं कि खुदा ने हमें कैसी माफी दी है। जबूर 51 उसकी 4 आयत को मेरे साथ देखें, वहां पर क्या लिखा है, बहुत दफा हमारे भाई बहन एक दूसरे की जब खता करते हैं तो हम उनको मुआफ नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि उसने मेरा गुनाह किया है, उसने उसका गुनाह किया है। लेकिन हकीकत में अगर कोई आपसे बुरे रवैये से पेश आता है, आपको बुरा भला या आपके खिलाफ गुनाह करता है, तो आपको उसके गुनाह को मुआफ करने की जरूरत है। हालांकि ये जरूरत नहीं कि वो आपके पास आकर इकरार करे, क्योंकि पुरानी इंसानियत में खाकसारी नहीं पाई जाती। दोबारा रिपीट करूंगा, पुरानी इंसानियत में खाकसारी हलीमियत नहीं पाई जाती, क्योंकि उसमें गुरूर, उसमें तकब्बर, उसमें हसद भरा हुआ है। ये मुमकिन नहीं, ये जरूरी नहीं कि कोई आकर मुआफी मांगे, हमें उसे मुआफ करने की जरूरत है जिस तरह हम मुआफ किए गए हैं, ताकि आप उसे आजाद करें, उसे बहाल करें। फिर जब आप किसी को मुआफ करते हैं तो आप यीशु मसीह की तरह का मिजाज रखते हैं और उसे आजादी देते हैं ताकि वो उस बोझ से रहाई पाए। मेरे साथ देखें 51 जबूर उसकी 4 आयत, 4 आयत में क्या खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है जब उसने गुनाह किया और कहता है कि मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया, किसका? खुदा का गुनाह किया और वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा था। दुख उसने किसको पहुंचाया? उसने बैतशीबा के हस्बैंड को, उसके खामन को कत्ल करवा दिया, हालांकि उसे उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो खुदा के सामने क्या करता है? इकरार करता है कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है। अगर तेरे बनाए हुए किसी इंसान को मैंने दुख दिया या उसके खिलाफ कुछ किया। हम जब भी गुनाह करते हैं तो अपने खुदा के खिलाफ बगावत या नाफरमानी करते हैं, तो हमें सिर्फ उसके आगे झुकने की जरूरत है। ये बहुत ही हलीमियत की बात है कि कोई फेलो बिलीवर, कोई ईमानदार वापस आके कहता है कि भाई कि बहन मुझे माफ कर, मैंने बातों बातों में तुझे दुख पहुंचाया। और क्या खुदा कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को कभी याद ना करूंगा। मेरे साथ एक और हवाला देखें, यसाया, यसाया नबी का सहीफा, उसका 43वां बाप उसकी 25वीं आयत को मेरे साथ देखें। वहां पर खुदा क्या कहता है कि मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं। देखें 43वां बाप उसकी 25वीं आयत को, ये वो खुदा है जो क्या करता है, हमारे गुनाहों को क्या करता है, मिटाता है। और फिर क्या कहता है, और तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। वो हमारी खताओं को याद नहीं रखता जब हम उसके आगे अपने खताओं का इकरार करते हैं। वो हमें क्या ठहराता है, हमें सादिक, रासबाज, हमें नेक नाम, बेऐब ठहराता है जब हम उसके आगे झुकते हैं। और जैसे हमने कुर्सियों उसके 2 उसकी 13 आयत में देखा, उसने हमारे तमाम गुनाह माफ किए जब हम उसके आगे इस बात का इकरार करते हैं। और हमें किस तरह एक दूसरे को ट्रीट करने की, एक दूसरे के साथ मिलने की जरूरत है, एक दूसरे के गुनाहों को माफ करने की जरूरत है। मेरे साथ देखें इफ़सियों 4 उसकी 32वीं आयत को, इफ़सियों 4 उसकी 32वीं आयत में खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरह पेश आने की जरूरत है, गुस्से के साथ, लड़ाई झगड़ी के साथ नहीं। सुने क्या खुदावंद का कलाम कहता है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के क्या करो, कसूर माफ करो। ये है रूह के फलों में से पहला फल मोहब्बत, और मोहब्बत गुनाहों पर पर्दा डालती है, और मोहब्बत गुनाहगार को उसकी शिकस्तगी से, उसकी गिल्ट, उसकी सारी शर्म से रहाई बख्शती है। जब हम एक दूसरे के साथ बड़े मेहरबान दिल की तरह सोचकर इस बात को सामने रखते हैं कि खुदा ने हमारे कसूर माफ किए, हमें भी एक दूसरे के कसूर माफ करने की जरूरत है। और हम अगर नहीं करते तो हम भी इस बात के हकदार नहीं ठहरते कि खुदा हमें माफ करे। वो हालांकि हमारी दुआओं का जवाब भी नहीं देता जब हम इस तरह का अपनी जिंदगी में नजरिया रखते हैं। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में यसाया 44वां उसकी 22वीं आयत को देखें मेरे साथ, यसाया 44वां उसकी 22वीं आयत को, यहां पर हम देख रहे हैं ये पुराना अहदनामा है, यहां पर खुदा कैसा रहम दिल नजर आ रहा है। तो नया अहदनामा तो उसके फजल से, उसकी बख्शिश से, उसके रहम से पुर है। 22वीं आयत में यूं लिखा है, यसाया 44वां, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद, मैं ने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। उसने हमारे गुनाहों को जिस तरह के बादल के घटाओं की तरह उसने उन सारे गुनाहों को मिटा डाला है। लेकिन जब हम मसलसल कमी कमजोरी में गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो फिर वो कहता है कि मेरे पास आ जा। ये वक्ती अलहदगी खुदा से पाई जाती है जब हमारी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है। दो तरह की गुनाह, दो तरह की मुआफी पाई जाती है, दो तरह की ईमानदारों की जिंदगी में अलहदगी पाई जाती है जब वो गुनाह करते हैं। पहले जब उनकी जिंदगी में गुनाह है तो मोहब्बत नहीं तो हसद बुगज है, तो वो ईमानदारों से दूर रहते हैं, ईमानदारों की जमात में बैठना पसंद नहीं करते क्योंकि खुदा की मोहब्बत से दूर हैं। दूसरी रूहानी तौर पर खुदा से जदाई होती है, इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? माफी का मतलब है एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे को माफ करना। जब भी गुनाह करें, कोई गलती कता करें तो वो कहता है कि मेरे पास वापस आ जा। और उसके लिए नहनामे में जो खुदावन का कलाम है, पहला यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी 9वीं आयत के मुताबिक, पहला यूहन्ना पहला बाप उसकी 9वीं आयत के मुताबिक ईमानदारों को खुदा के पास जाने की जरूरत है और इस बात का इकरार करने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें तमाम गुनाहों से माफ करने में सच्चा और आदल है और सारी नाराजगी को हमारी जिंदगी से दूर करता है, हमारी जिंदगी में से क्या करता है? दूर करता है। इसी तरह दूसरे बाप की पहली ही आयत में यूहन्ना कहता है, ऐ मेरे बच्चों, ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा मददगार मौजूद है, यानी कि मसीह यसु रास्तबाज। जब भी गुनाह गलती में गिरते हैं सिर्फ अलहदगी में उसके साथ बात करने की जरूरत है, उसके आगे झुक जाने की जरूरत है। आज एक कहानी जो बाइबल मुकद्दस में से है आपके साथ, इससे पहले कि खत्म करूं, आपके साथ इस कहानी में से देखेंगे खुदा की उस अजीम मोहब्बत को और मुआफी को यूसुफ की जिंदगी में से। यूसुफ की जिंदगी का जब हम मतालिया करते हैं पुराने नामों में से, तो उसकी जिंदगी का जो आगाज वो 37वें बाप में से शुरू होता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ अपने घराने में अपने 12 भाइयों में से बाप का बहुत चहीता है, बाप की बहुत फरमाबरदारी करता है, उससे मोहब्बत करता है। और इसका हमें जिक्र 37वां बाप उसकी पहली आयत से 24वीं आयत में मिलता है कि यूसुफ की जिंदगी में देखते हैं कि खुदा का मंसूबा और मुआफी और वो हकीकी मतलब जो खुदा चाहता है कि उसकी जिंदगी में पूरा हो। आप इन हवालात को नोट कर सकते हैं और इसमें से मतालिया करें, आपके लिए अच्छा वक्त होगा। और दूसरी बात हम देखते हैं 37वां बाप उसकी 25वीं आयत से 36वीं आयत तक के खुदा की सोच की लंबाई हमारे इल्म और हमारे सोचने से कहीं बढ़तर है, कहीं बढ़कर है। क्योंकि जब 37वें बाप उसकी 25वीं आयत से 26वीं आयत में देखते हैं तो उसके भाइयों ने उसे क्या किया? घड़े में डाल दिया और उसको बेच डाला इस्माइलियों के हाथ में ताकि वो मिस्र में पहुंचे। और यूसुफ को ये इल्म ना था कि वो खुदा के मंसूबा में है और खुदा उसके वसीला से क्या करने को जा रहा है। और उसकी सोच सिर्फ महदूद थी लेकिन खुदा की सोच बहुत दूर तक सोचने की कुदरत और ताकत रखती है। जैसे यसाया उसका 55 बाप उसकी 8वीं और 9वीं आयत में यूं लिखा है, खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद हैं। यूसुफ को ये इल्म नहीं था कि वो इस दुख में से क्यों गुजर रहा है, ना उसने कोई खता की, ना उसने कोई जुर्म किया, सिर्फ उसने ये बात अपने भाइयों से शेयर की कि खुदा में मैंने एक ख्वाब देखा कि सात सूरज और चांद और 11 सितारे मुझको सजदा करते हैं। और वो उससे क्या रखना शुरू कर दिया, उन्होंने उससे हसद, बुगज और उससे कीना रखना शुरू कर दी, क्योंकि उसने उनको ये बात बताई और वो समझ गए कि एक दिन वो उसको क्या करेंगे, सजदा करेंगे। और तीसरी बात हम देखते हैं 39वें बाब की दूसरी आयत से छठी आयत में, और खुदावंद यूसुफ के क्या था, साथ था, वो इस सारे दुख में से गुजरा। और इस 39वें बाब दूसरी आयत से छठी आयत तक देखते हैं, खुदावंद उसके साथ था और वो अकबालमंद हुआ। बहुत दफा हमारी जिंदगी में भी हम किसी का कसूर नहीं करते, हम सिर्फ खुदा के मंसूबा में होते हैं। लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, लोग आपके लिए बुरा मंसूबा बांधते हैं, आपसे बिला वजह हसद या बुगज रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर बड़ा प्यारा बयान है कि उन सारी मुसीबतों में, उसकी कैद में, खुदा उसके साथ था और उसको इकबालमंद और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। उसे वहां पर सारी चीजों पर अख्तियार मिला, उसे खाने के लिए अच्छी चीजें मिली, हर चीज उसे खुदा ने वहां पर अच्छे तरीके से मुहैया की, क्योंकि वो खुदा के मंसूबा में था। और चौथी बात हम देखते हैं 39वें बाप उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक, जब फोतीफार की बीवी ने देखा कि यूसुफ बहुत खूबसूरत है और बहुत जवान है और नेक है और उसमें से वो खुदा का नूर नजर आता था, क्योंकि वो खुदा से डरता और खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करता था, तो उसकी बीवी ने क्या उस पर डोरे यानी कि इबलीस ने उसके लिए वो ठोकर का पत्थर बनाया। लेकिन यूसुफ अपने करदार में क्या रहा, पाक और बेऐब रहा। कलाम सुनने की जरूरत है, बच्चों से मत खेलें। हमें खुदावंद यहां पर क्या सिखाता है कि वो अपनी सारी अपने सारे उस वक्त में खुदा से वफादार रहा और उसने कहा कि देख मेरे मालक ने जो तेरा खामद है मुझे सारी इख्तियारात दिए हैं सिवाय तेरे, मैं खुदा का गुनाहगार नहीं होना चाहता। फिर 5वीं बाब को देखते हैं 39वें बाब उसकी 19वीं आयत से 20वीं आयत तक, उसके आका को जब पता लगा कि उसकी बीवी ने उसके साथ झूठ बोल, उसके आका ने जब उसकी अपनी बीवी को सुना तो उसने उससे झूठ बोला और फोतीफार ने उसे क्या किया, कैद खाना में डलवा दिया। और जब देखा कि यूसुफ उस दुख के बायस फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हुआ खुश नजर आता है, उसने उसके लिए दुगनी सजा ठहराई। ये वो हसद है जो खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है जब लोग ईमानदारों के साथ बुरा रवैया रखते हैं, खासकर जब ईमानदार खुदा के मंसूबा में होते हैं। लेकिन यूसुफ कैद खामा में क्या किया गया, सरबुलंद किया गया, क्योंकि वो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा था। छठी बात को हम देखते हैं 40वां बाप उसकी 1वीं आयत से 4वीं आयत में, यूसुफ कैदखाना में नजरबंद कर दिया गया और फरून इन दिनों में अपने दो हाकमों से नाराज हुआ उनकी खिदमत से, और उसने उन दो हाकमों को, एक जो साकी था और दूसरा जो उसके साथ खिदमत करता था, उसको उसके साथ कैदखाना में डाला और यूसुफ पर यह बोझ डाला कि वो उनकी खिदमत करे। देखने की यहां पर जरूरत है यूसुफ की हिम्मत को, यूसुफ की उस सोच को, क्योंकि वो खुदा की मंसूबा को समझ गया जब वो सारे हालात में से गुजरा, सिखाया गया। इसी तरह जब हम किसी तरह के आज दुख में से, तकलीफ में से गुजर रहे हैं, तो हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि इसके पीछे खुदा का हाथ है, क्योंकि हमारे ख्यालात उसके ख्यालात नहीं, उसके ख्यालात कहीं बुलंद हैं, जिस तरह के आसमान जमीन से। हमें सिर्फ अपने आप को उसके आगे पेश करने की जरूरत है। और इन सारे हालात से जब वो गुजरता है, उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, उसे पकड़वा दिया, उसे बेच दिया और ने उसने दुख उठाया। यहां पर यूसुफ की उस हलीमियत को, यूसुफ की उस फरोतनी को, उस शराफत को देखते हैं, जिसका नमूना आज हमें अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है कि उसने अपने भाइयों के साथ क्या किया। उसने हसद नहीं रखा, उसने बुरे रवैये के साथ बुरा रवैया ना किया। मेरे साथ एक हवाला देखें, इसके साथ हम क्लोज करेंगे इस माफी के दर्स को यूसुफ की जिंदगी में, कि उसने किस तरह उनको माफ किया। पैदाइश 45वां बाप उसकी पहली आयत में से आपके लिए पढ़ूंगा। तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने आप को साबित ना कर सका और चलाकर कहा हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उनके साथ ना था। उसने सारे सिपाहियों को जो उसके इख्तियार में थे उनको कहा कि बाहर चले जाओ। और दूसरी आयत में, और वो चला चला कर रोने लगा। उसकी फरोतनी को, उसके रहम दिली को देखते हैं कि वो चला चला कर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फारून के महल में भी आवाज गई। यहां पर उसकी उस मोहब्बत का, उसके उस देखते हैं कि हालात को, कि उसकी में जो खुदा ने उसे तोड़ा है सारे हालात में से, तो उसने ये नहीं सोचा कि उनके साथ क्या करे। वो उनके साथ रोया और ये अपने आप को खाकसार करने की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। 34वीं आयत में देखे, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं। जब उसने उनको जाहिर किया कि मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उससे कुछ जवाब ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबराए। उन्हां नूं याद आ गया कि असी इहदे नाल की कीता, इहनूं बन्निया, इहनूं बन्न के टोए च सुट्टिया, उस तों बाद इहनूं वेच दित्ता ते सारे दुखां चों गुजरिया। उहनां दे ज़ेहन ते सारी गल आ गई कि हुण इह साडे नाल की करेगा। लेकिन ऐसा ना हुआ क्योंकि वो खुदा की उस मोहब्बत को जानता था जिसमें खुदा ने उसे सरबलंद किया। और इस सारे तोड़े जाने में खुदा ने उसे क्या किया, पुख्ता किया। मैच्योरिटी यानी कि पुख्तगी उसकी जिंदगी में आई। आपकी जिंदगी में जब भी कोई दुख तकलीफ जारी होती है तो उसके पीछे खुदा का मकसद है, खुदा का मकसद है। चौथी आयत को देखें, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक तो आ जाओ। और वो नजदीक आए तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने उसने उनको सब बात याद दिलाई, जिसको तुमने बेचकर मिस्र में मिस्र पहुंचाया। इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचाया, ना तो गमगीन हूं और ना अपने दिल में परेशान हूं। कैसी इंसानियत नजर आती है। इतना कुछ होने के बाद वो कहता है कि मैं इस बात से गमगीन या परेशान नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। वो इस बात को जानता था कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उसने कहा, खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। और हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हर एक चीज का इल्म रखता है। जैसे कि इस्तिस्ना 31वां बाप उसकी 8वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदावन तेरा खुदा आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा, वो तुझे ना छोड़ेगा, सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। आपका खुदा जो जिंदा खुदा है आपसे पहले आपके आगे जाकर आपके रास्ते तैयार करता है। और उसने क्या कहा कि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझसे जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, तुझसे आगे भेजा ताकि अपनी क्या करूं मर्जी को जाहिर करूं, अपनी मर्जी को जाहिर करूं। और आगे छठी आयत में देखते हैं, इसलिए अब 2 वर्ष से मुल्क में अकाल है, अभी 5 वर्ष और ऐसे हैं। 5 का लफ्ज जब हम देखते हैं ये खुदा के फजल को खुदा के ग्रेस को जाहिर करता है। कैसी खूबसूरत तस्वीर है कि उसने कहा कि खुदा ने जो कुछ भी तुमने किया मैंने इस बात को जाना कि खुदा ने इसलिए किया ताकि मैं क्या करूं उन जानों को बचाने का वसीला बनूं। अगर आप आज किसी दुख में से गुजर रहे हैं तो आप खुदा के मंसूबा में से हैं, खुदा के मंसूबा में हैं। आए हम खुदावंद के हजूर झुकें। आसमानी बाप, आज जो हमने मुआफी का दर्स तेरे बंदा यूसुफ की जिंदगी में से देखा कि बेशुमार दुखों का मुसीबतों का सामना करते हुए उसने अपने भाइयों को इस बात के बारे में बताया कि ये खुदा बाप का मकदस खुदा बाप का मकसद था कि उसकी मर्जी पूरी हो और वो सारी जानों को बचाए, क्योंकि अगर वो जाने मर जाती तो आज 12 कबीले ना होते। इसीलिए खुदा बाप तेरी मर्जी पूरी हुई कि तूने यूसुफ को इस्तेमाल किया। सो खुदा बाप, आज जो भी भाई बहन आज ऐसे कैसे भी हालात से गुजर रहे हैं उनकी रहनुमाई कर ताकि वो तेरी मर्जी को जाने और तेरे ही ताबे रहें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमेन।